लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं, ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्ण का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। वह यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। तीन बातें मेरी बुद्धि से परे हैं, चार समझ में नहीं आती। आकाश में गरुड़ का मार्ग, चट्टान पर सांप का मार्ग, समुद्र पर जहाज का मार्ग और युवती के साथ पुरुष का व्यवहार। श्रोताओं, ये थी सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के 18वें और 19वें पदों में निहित आगूर की सूक्तियां। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन सूक्तियों में आगूर चमत्कार पूर्ण बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। ऐसी बातें जिन्हें हम पूर्ण रूप से बुद्धिगम्य नहीं कर पाते। आगूर का परामर्श है कि जो बात समझ में न आए, जो हमारी बुद्धि से परे हो, उस पर बस आश्चर्यचकित हुआ जाए और उसके आगे विनम्र बना जाए। जिन चार बातों की सूची आगूर ने दी है, वे ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती हैं और फिर विच्छिन्न हो जाती हैं। इन सभी में प्रगति या प्रेरणा का एक रहस्यमय तरीका है। ये सभी चीजें किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ती रहती हैं। लेखक कहता है कि आकाश में गरुड़ का मार्ग या उसकी उड़ान, चट्टान पर रेंगता सांप और विशाल समुद्र के बीच से गुजरता हुआ जहाज आश्चर्यजनक होता है। ये वे अदृश्य मार्ग हैं जो आसान, आकर्षक और शालीन लगते हैं, फिर भी उतार चढ़ाव से भरे होते हैं और कठिन वातावरण में भी आगे बढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अंत में आगूर युवती के साथ पुरुष के व्यवहार की बात करता है। उन दोनों के बीच के प्रेम की शक्ति महान और इच्छा तीव्र होती है, जो उन्हें विवाह बंधन में बंधने और साथ रहने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ मनुष्य को आश्चर्यचकित कर देने वाले तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित कराकर आगूर मानवीय संबंधों और उनमें प्रकट प्रभु ईश्वर की महिमा को देखने और उसका गुणगान करने के लिए हम सबको आमंत्रित करता है।
स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
तू स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
आगे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय के बीसवें पद में लेखक कहता है, व्याभिचारिणी का आचरण ऐसा ही है। वह खाती, मुंह पोछती और कहती है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। श्रोताओं, राजा सुलेमान के सदृश ही आगूर ने भी अपने बेटे या एक जवान आदमी को सूक्तियों में ज्ञान दिया। बेशक यह सूक्ति व्यभिचारी आदमी पर भी लागू हो सकती है, लेकिन अपने श्रोताओं के पुरुष होने की वजह से वह सबसे पहले व्यभिचारी स्त्री के आचरण की चर्चा करता है। वस्तुतः व्यभिचार एक अप्राकृतिक कार्य है और पाप है, किंतु व्यभिचारिणी स्त्री अथवा व्यभिचारी पुरुष के लिए यह एक मामूली सा कार्य है। वह उसके लिए उसके भोजन के समान एक सामान्य कार्य है। लेखक कहता है कि वह खाती है और मुंह पोछ डालती है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। चूंकि इस महिला की पहचान उसके व्यभिचार से है, इसलिए यहाँ उसका खाना उसके व्यभिचार के पाप का एक स्वादिष्ट संदर्भ है। वह व्यभिचार के लिए अपनी भूख को संतुष्ट करती है, फिर लापरवाही से अपना मुंह पोंछ डालती है और खुद को निर्दोष मानती है। कहती है, मैंने कोई दुष्टता नहीं की। वस्तुतः व्याभिचारी स्त्री उन सब लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो ईश्वर, विवाह, परिवार, समुदाय, व्याभिचार में अपने साथी और अपने स्वयं के शरीर के खिलाफ पाप करती है, फिर भी इसे कोई दुष्टता नहीं मानती। बाइबल आचार्य वाल्टके कहते हैं, व्याभिचारिणी में व्यवस्थित समाज की नींव को नष्ट करने के प्रति कोई विवेक नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अपनी यौन भूख को संतुष्ट करना भौतिक भूख को संतुष्ट करने से अलग नहीं है। व्याभिचारिणी स्त्री यौन संबंधों को उसी दृष्टि से देखती है जैसे वह भोजन को देखती है। वह अपना खाना खत्म करती और निश्चिंत होकर बिना किसी अपराध बोध के चली जाती है। ऐसे व्याभिचारियों से सावधान रहने का इस सूक्ति में परामर्श दिया गया है। आगे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय के 21 से लेकर 23 तक के पदों में लेखक कहता है, तीन बातों से पृथ्वी कांपती है, चार को सहन नहीं कर पाती। राजा बनने वाला दास, भरपेट भोजन करने वाला मूर्ख, विवाह करने वाली कुत्सित स्त्री और अपनी मालकिन का स्थान लेने वाली नौकरानी। श्रोताओं, एक बार फिर तीन और चार वाक्यांशों का उपयोग करते हुए आगुर ने चार चीजों की चर्चा की जो पृथ्वी को परेशान करती हैं, जो असहनीय है, ऐसी चीजें जो मूल रूप से सही नहीं है। फिर राजा बनने वाले दास से आगुर का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से था जिसका मन दासतापूर्ण रूप से पतित था, जो एक स्वतंत्र व्यक्ति के बजाय एक दास की तरह सोचता और जीता था। जब ऐसा व्यक्ति शासन करता है तो वह असहनीय हो जाता है। वस्तुतः ऐसा सेवक जो दूसरों पर अधिकार जमाता है, उसके पास न तो अच्छा प्रशिक्षण होता है और न ही सेवा का भाव। उसी तरह भरपेट भोजन करने वाला मूर्ख होता है, इसलिए कि जब कोई मूर्ख संतुष्ट होता है तो वह अपनी ही मूर्खता को आगे बढ़ाता है और ऐसा व्यक्ति असहनीय हो जाता है। इसी प्रकार कुत्सित महिला भी असहनीय होती है। ऐसी महिला जो झगड़े उत्पन्न करती, जो व्यभिचार करती और चालाकी से अपने काम निकलवा लेती है, वह समाज का कलंक होती है। और यदि वह अपनी मालकिन का स्थान लेने की जरूरत करती है तो वह और भी घृणित हो जाती है, क्योंकि वह अपनी मालकिन के साथ ही अन्याय कर डालती है। ऐसी महिला घरों को फोड़ती, झगड़ों का कारण बनती और असहनीय हो जाती है। आगुर का परामर्श है कि व्यक्ति इन्हीं बुरी बातों से बचे, वह प्रभु पर श्रद्धा रखे और अपना मन भले कर्मों में लगाए।
तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
तू
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। अपनी आंखें प्रभु पर टिकाए रखें। बुधवार की सुबह वैटिकन में त्रिवेनेतो के उत्तरी इतालवी धर्म प्रांत से आए सेमिनरी छात्रों को संबोधित करते हुए पोप लियो ने यही महत्वपूर्ण सुझाव दिया। संत पापा ने संत अगस्तीन के मन परिवर्तन के संदर्भ में उनके शब्दों को याद किया, जिन्होंने स्वीकार किया कि एक ओर वे मसीह के लिए निर्णय लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर वे संकोच और प्रलोभनों से पीछे हट गए थे। इन संघर्षों के बीच में संत पापा ने अंततः उनसे संत अगस्तीन की तरह खुद को प्रभु को सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु पर असीम भरोसा रखें, जिसने आपको बुलाया है। इस भ्रम को त्याग दें कि आप अपने आप में पर्याप्त हैं या आप इसे स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल सेमिनरी में बल्कि उनके पूरे जीवन पर लागू होता है। पोप लियो ने सुझाव दिया कि हर समय, खासकर एकाकीपन या पाप के समय में, स्तोत्रकार के शब्दों को अपने आप में दोहराएं। मैं खुद को ईश्वर की विश्वसनीयता पर छोड़ता हूँ, अभी और हमेशा के लिए। इस भावना के साथ संत पापा ने उनसे हमेशा ईश्वर के वचन एवं संस्कारों की ओर मुड़ने का आग्रह किया। पोप ने प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, और आप प्रशिक्षक आपको सौंपे गए सेमिनरी छात्रों के लिए अच्छे सहयात्री बने। उन्हें अपने जीवन और विश्वास की विनम्र गवाही देते हुए उनके साथ सच्चे स्नेह से चलें। जाने कि आप सभी को कलीसिया अपना समर्थन देती है, विशेषकर धर्माध्यक्षों के रूप में। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पोप लियो ने कहा, अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखें, उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बढ़ाएं। वास्तव में यीशु से मिलना हमारे जीवन को बचाता है और हमें सभी को सुसमाचार संप्रेषित करने की शक्ति और खुशी देता है। अंत में संत पापा ने प्रार्थना की कि धन्य माता हमेशा उनके साथ रहें तथा उनके लिए विश्वास की शुभ यात्रा की कामना की। पोप लियो ने बृहस्पतिवार को पूर्वी कलीसियाओं के लिए सहायता एजेंसियों के सदस्यों से मुलाकात की और पूर्वी रीति के कैथोलिकों को संघर्ष से उत्पन्न विनाश के बीच ख्रिस्त की शांति की गवाही देने के लिए प्रोत्साहित किया। पूर्वी कलीसियाओं के लिए सहायता एजेंसियों के सदस्य इन दिनों अपनी वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए रोम में है। अपने संबोधन में पोप ने पूर्वी रीति की कार्तिक कलीसियाओं के विश्वासों के लिए भौतिक और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की तथा संगठन के मिशन को आनंद की घोषणा कहा। उन्होंने परोपकारी संगठनों और उनके लाभार्थियों को पूर्वी ख्रिस्तों की भूमि में आशा के बीज बोने के लिए धन्यवाद दिया, जिनके बारे में उन्होंने अफसोस जताया कि हाल के वर्षों में युद्धों और घृणा के बादल ने उन्हें तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा, बहुत से लोगों के लिए जो साधनहीन हैं लेकिन विश्वास में समृद्ध हैं, आप एक प्रकाश हैं जो घृणा की काली छाया के बीच चमकते हैं। पोप लियो ने कहा कि कार्तिक समुदाय के भीतर भी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न और गलतफहमी पैदा हुई है, जो कई बार पूर्वी ख्रिस्तीय परंपराओं के मूल्य की सराहना करने में विफल रही है। उन्होंने कार्तिक कलीसिया के भीतर पूर्वी रीति को बेहतर ढंग से जानने की अपनी इच्छा व्यक्त की और सुझाव दिया कि लैटिन रीति के कैथोलिकों को हमारे पूर्वी भाइयों और बहनों के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनरी एवं कार्तिक विश्वविद्यालयों में कोर्स आयोजित किए जाए। उन्होंने कहा, मुलाकात और प्रेरित गतिविधियों को साझा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि पूर्वी कैथोलिक आज हमारे दूर के चचेरे भाई नहीं हैं, जो अपरिचित धर्म विधि का अनुष्ठान करते, बल्कि हमारे भाई और बहन हैं, जो जबरन पलायन के कारण हमारे पड़ोसी हैं। पोप ने पूर्वी ख्रिस्तों की पौत्रता की भावना, पीड़ा से दृढ़ उनकी गहरी आस्था और उनकी आध्यात्मिकता जो ईश्वरीय रहस्यों से भरी हुई है पर प्रकाश डाला। पोप लियो ने पूर्वी ख्रिस्तों पर हुए हिंसा को याद किया। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण कुछ सदस्य वार्षिक बैठक के लिए रोम नहीं आ पाए।
जब हम यूक्रेन और गजा में दुखद और अमानवीय स्थिति तथा युद्ध के प्रसार से तबाह हुए मध्य पूर्व के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिल रो पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इन संघर्षों के कारणों की जांच करनी चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही ऐसे स्पष्टीकरणों को अस्वीकार करना चाहिए जो भ्रामक या झूठे हों। अंत में पोप लियो ने पूर्वी ख्रिस्तों की गवाही की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारा आह्वान यीशु के प्रति वफादार बने रहने के लिए हुआ है, खुद को सत्ता के चंगुल में फंसाने के लिए नहीं। आइए हम ख्रिस्त का अनुसरण करें, जिन्होंने दिलों को नफरत से मुक्त किया और अपने उदाहरण से दिखाएं कि विभाजन और प्रतिशोध की मानसिकता से कैसे मुक्त हुआ जाए। पोप लियो चौथवे ने बृहस्पतिवार को वैटिकन में रेडेम्पटरिस्ट एवं स्कैलेब्रिनियन धर्मदर्शों से मुलाकात करते हुए याद दिलाया कि प्रभु का कार्य हमेशा हमसे पहले होता है। हमें उदारता पूर्वक एवं निस्वार्थ भाव से अपने मन को ढालना चाहिए और मसीह के पूरे झुंड की भलाई के लिए काम करना चाहिए। पोप ने खुशी व्यक्त की कि इस मुलाकात ने दो धर्म संघों के धर्मदक्षों को एक साथ लाया और धर्मदक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि यह आदान प्रदान एक ऐसा आदान प्रदान है जो निश्चित रूप से उपस्थित धर्मदक्षों, उनके समुदायों और ईश्वर की समस्त प्रजा को समृद्ध करता है, जैसा कि द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा सिखाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, कलीसिया आपके धर्म संघ के प्रति आभारी है जिसने आपके सदस्यों में से धर्मदक्षों की नियुक्ति के माध्यम से खासकर घटती बुलाहट के समय में महत्वपूर्ण त्याग किया है। पोप लियो ने माना कि विभिन्न प्रेरितायों में लगे हुए अपने साथियों से वंचित होना कोई छोटी कठिनाई नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे कहा, ईश्वर ने आपके धर्म संघ को एक महान वरदान दिया है, क्योंकि सर्वभौमिक कलीसिया की सेवा किसी भी धर्म संघ परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी एवं कृपा है, जैसा कि आपके संस्थापक निश्चित रूप से पुष्टि करेंगे। और अंत में पोप लियो ने उनके महान कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए उनके सभी समुदायों को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया। ड्रग के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर पोप लियो चौदहवें ने नशे की लत से जूझ रहे सभी लोगों को सांत्वना के शब्द कहे तथा याद दिलाया कि हालांकि नशीली दवाओं का प्रयोग एक प्रकार की अदृश्य जेल हो सकती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है, फिर भी हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार। कदम दर कदम पोप लियो चौदहवें दुनिया को अपना परिचय देते हैं।
आप सबों को शांति मिले।
और उसी क्षण से उनके कदम हमारे भी बन गए हैं।
मैं आपके पास एक भाई के रूप में आया हूँ जो आपके विश्वास और आपके आनंद का सेवक बनना चाहता है।
संत पेत्रुस की दान राशि में अपने योगदान के साथ संत पिता के कदमों का ठोस रूप से समर्थन करें। आप उन्हें दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करेंगे और जरूरतमंद भाइयों और बहनों की सहायता में हाथ बटाएंगे।
भाइयों, बहनों, यह प्रेम का समय है।
संत पेत्रुस के अनुदान राशि में योगदान दें। संतपेत्रो.va के साइट www.obolo पर जरूर जाएं।